नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं पूनम आहूजा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए दोहरे मानदंडों को खारिज किया। ऊर्जा नीति की समीक्षा के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में पाकिस्तान के हमले में 7 लोगों की मौत और नेपाल ने भोटेकोशी नदी के किनारे चीन द्वारा सुरक्षा दीवार के निर्माण का विरोध किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के सुरक्षित ठिकानों को समाप्त करने और किसी भी राजनीतिक अपवाद को खारिज करने की बात कही। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित सीमा पार आतंकवाद परिषद SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि किसी भी देश द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद जो किसी राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला करता है को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के पीड़ितों को याद करते हुए श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ये दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे इस प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है।
रक्षा मंत्री ने SCO के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक दृष्टिकोण में भिन्नता है तो देश तेजी से आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं और ऐसे में SCO विश्व की सब कुछ प्राचीन सभ्यताओं का घर है और सबको एकजुट किए हुए है।
ऑर्डर में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। इसी पृष्ठभूमि में SCO एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। इस संगठन ने हमेशा आतंकवादी विचारधाराओं और गतिविधियों की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष को अपना आधार बनाया है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इस संगठन के मूल सिद्धांतों में शामिल है।
श्री सिंह ने दोहराया कि भारत SCO के जनादेश के कार्यान्वयन में रचनात्मक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त अरब अमीरात ने इस वर्ष 1 मई से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। ये कदम संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय उत्पादन नीति, क्षमता और दीर्घावधि आर्थिक प्राथमिकताओं की व्यापक समीक्षा के बाद उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति लचीलापन बढ़ाने का लक्ष्य दर्शाता है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय हित और वैश्विक ऊर्जा मांग से निपटने की प्रतिबद्धता पर आधारित है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने और 75 से अधिक के घायल होने की खबर है। हमलों में प्रांतीय राजधानी असदाबाद और सरकानो जिले सहित कई स्थानों को निशाना बनाया गया। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार कई आवासीय क्षेत्रों और सैयद जमालुद्दीन अफगान विश्वविद्यालय पर हमले हुए। अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में मोर्टार के गोले गिरने से करीब 30 विद्यार्थियों और कर्मचारी घायल हुए। अफगानिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय तथा इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। अफगानिस्तान ने इसे शिक्षा पर हमला करार दिया और दुनिया भर के देशों से इस पर ध्यान देने का आग्रह किया। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। बलोच महिला फोरम ने संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख वैश्विक मानवाधिकारों संगठनों से बलूचिस्तान से कथित रूप से महिलाओं के लापता होने के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित प्रमुख मानवाधिकार संगठनों को लिखे पत्र में फोरम ने स्थिति को गंभीर बताया है। फोरम ने क्वाटा में नर्सिंग छात्रा खदीजा बलोच, कराची की हसीना नूर बख्श और केच जिले की गुलबानो ताज को जबरन उनके घर या हॉस्टल से अज्ञात लोगों द्वारा अपहृत किए जाने की घटनाओं का उल्लेख किया। इनके परिवारों को अब तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फोरम ने कहा कि ऐसी घटनाएं बलोच महिलाओं को प्रताड़ित किए जाने की व्यापक साजिश का प्रमाण है। फोरम ने इन घटनाओं की जांच कराए जाने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल ने चीन द्वारा नेपाल चीन सीमा पर भोटेकोशी नदी के किनारे चीन की तरफ बनाई जा रही सुरक्षा दीवार का कड़ा विरोध किया है। नेपाली अधिकारियों ने कहा कि चीन द्वारा किया जा रहा यह निर्माण कार्य वर्ष 1963 में दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते का उल्लंघन है। समझौते के अनुसार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई निर्माण करने से पहले दोनों पक्षों को एक दूसरे को पूर्व सूचना देनी होगी। नेपाल को आशंका है कि इससे नदी का रास्ता बदल सकता है और इससे नेपाल को नुकसान हो सकता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने चीन से तत्काल निर्माण कार्य बंद करने का आग्रह किया है। युगांडा में मानव तस्करी और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में 231 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां उत्तरी युगांडा और राजधानी कंपाला में हुई हैं। एक रिपोर्ट।
हिरासत में लिए गए लोगों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, घाना, म्यांमा, इथियोपिया, श्रीलंका, कंबोडिया और मलेशिया के नागरिक शामिल हैं। इनमें से कई लोगों के पास वैध यात्रा दस्तावेज थे। युगांडा के अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में लिए गए कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें रोजगार का झांसा देकर युगांडा लाया गया था। अन्य लोगों के कथित तौर पर ऑनलाइन जालसाजी में शामिल होने की खबर है। पीड़ितों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल न होने वाले नागरिकों को उनके देश पहुंचाने में सहायता दी जाएगी, जबकि अन्य लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। उन्हें देश से निकाला भी जा सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
इंडोनेशिया के बकौसी में रेलगाड़ियों की टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। दुर्घटना में 84 लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो ने घायलों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। ये दुर्घटना जकार्ता बेकासी मार्ग पर जा रही रेलगाड़ी और जकार्ता से सुरबाया जा रही रेलगाड़ी से टकराने से हुई। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 16 कस्बों और गांवों के निवासियों से तुरंत क्षेत्र खाली करने को कहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता ने कहा कि हिजबुल द्वारा संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के बाद लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने कहा कि वो लेबनान में इजरायली सेना पर हमले नहीं रोकेगा जब तक कि इजरायल हमले बंद ना करे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेरबाक से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूएन 80 पहल, सतत विकास लक्ष्यों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने वैश्विक दक्षिण के लिए बहुपक्षवाद में सुधार पर बल दिया। समूह में राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप तथा संबंधित यूनिवर्सल कप सीनियर में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों में सुनील सिंह और अभिनव गोगोई, जबकि महिलाओं वर्ग में एसंगफा गोगोई ने स्वर्ण पदक जीता। यूनिवर्सल कप के पुरुष वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के चारू पेसी ने भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए दोहरे मानदंडों को खारिज किया। ऊर्जा नीति की समीक्षा के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में पाकिस्तान के हमले में 7 लोगों की मौत और नेपाल ने भोटेकोशी नदी के किनारे चीन द्वारा सुरक्षा दीवार के निर्माण का विरोध किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।